ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में सहभागी होने के लिए कल करेंगे प्रस्थान। रोजगारी सृजित करने के हिसाब से निवेश का उपयोग होना चाहिए, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली का कथन। और इसराइली सैनिकों द्वारा रिफ्यूजी कैंप पर किए गए हमले में 55 फिलिस्तीनियों की मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में सहभागी होने के लिए कल भारत की राजधानी दिल्ली जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के मैत्रीपूर्ण निमंत्रण में भारत जा रहे प्रधानमंत्री प्रचंड और मोदी के बीच कल ही भेंटवार्ता के कार्यक्रम है। ये जानकारी नई दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास ने दी है। प्रधानमंत्री प्रचंड के साथ उनकी बेटी गंगा दहाल, कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री पदम गिरी और उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री प्रचंड परसों सोमवार को स्वदेश लौटेंगे। इसी संदर्भ में राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल से प्रधानमंत्री प्रचंड ने मुलाकात की और अपने आसन्न भारत भ्रमण के बारे में जानकारी कराई। ये जानकारी राष्ट्रपति के स्वकीय सचिवालय ने दी। आज राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में हुई मुलाकात में उनके बीच अन्य समसामयिक विषयों में भी बातचीत हुई थी। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने कहा कि पार्टी को राष्ट्रीय राजनीति की निर्णायक शक्ति बनाना होगा। आज एमाले काठमांडू जिले के सातवें अधिवेशन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ओली ने कहा कि देश में राजनीतिक स्थायित्व सहित विकास और समृद्धि के लिए पार्टी को अग्रस्थान पर पहुंचाना होगा। आज काठमांडू में ही एमाले उद्योग व्यवसाय विशेष जिला कमेटी के दूसरे जिला अधिवेशन का उद्घाटन करते हुए अध्यक्ष ओली ने कहा कि आगामी आर्थिक वर्ष के लिए बनाए गए बजट के प्रभावकारी क्रियान्वयन के लिए उसमें कुछ चीजों को सुधारने के विषय में सरकार से राय मशवरा चल रहा है। इस बात का जिक्र करते हुए देश में प्रत्यक्ष वैदेशिक निवेश लाए जरूर जाते हैं लेकिन उनसे खास फायदा नहीं उठाया जाता। अध्यक्ष ओली ने कहा कि अब रोजगारी सृजित होने के हिसाब से निवेश का उपयोग होना जरूरी है। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के परसों जेठ 28 से शुरू होने वाले एकता राष्ट्रीय महाधिवेशन की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। ये बात आज जनकपुर में बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने बताई। उन्होंने बताया कि महाधिवेशन में देश के सभी 77 जिलों से 1300 प्रतिनिधि सहभागी होंगे। तीन दिनों तक चलने वाले महाधिवेशन के बंद सत्र में राजनीतिक वैचारिक दस्तावेज नीतिगत दस्तावेज पेश होंगे जिन पर खुली बहस और राय मशवरे के बाद महाधिवेशन से आवश्यक परिमार्जन सहित उन्हें पारित किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया गया कि महाधिवेशन से नए नेतृत्व के लिए जेठ 30 गते चुनावी प्रक्रिया शुरू होगी। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री हित बहादुर तामांग ने कहा कि भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के ग्राउंड हैंडलिंग सेवा संचालन का जिम्मा निजी कंपनियों को दिया जा सकता है। आज काठमांडू में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री तामांग ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की मान्यता प्राप्त निजी विमान कंपनी अगर गौतम बुद्ध विमानस्थल को आधार बनाकर नियमित उड़ान शुरू करेंगे तो ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि पर्यटन क्षेत्र में दिख रही समस्याओं के समाधान के लिए नीतिगत सुधार करने और व्यवसायियों को उत्साहित करने की जरूरत है और सरकार इस पर काम कर रही है। नेपाली कांग्रेस के नेता डॉ शशांक कोइराला ने कहा कि स्थिर सरकार के लिए निर्वाचन प्रणाली को बदलने की जरूरत है। आज नेपालगंज में नेपाली कांग्रेस बांके के दूसरे जिला अधिवेशन का सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए डॉ कोइराला ने कहा कि संविधान संशोधित करके निर्वाचन प्रणाली को बदलने के लिए दलों के बीच समझदारी होना जरूरी है। नेपाली कांग्रेस के महामंत्री गगन कुमार थापा ने कहा कि नेपाली कांग्रेस विक्रम संवत 2084 तक प्रतिपक्ष में रहेगी। आज नेपाली कांग्रेस काठमांडू महानगरपालिका वार्ड नंबर 3 के कार्य समिति की काठमांडू में आयोजित वर्तमान राजनीतिक अवस्था में नेपाली कांग्रेस की भूमिका विषयक अंतर्क्रिया कार्यक्रम में महामंत्री थापा ने कहा कि 5 सालों के लिए 5 दलों के बीच गठबंधन हुआ था लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण गठबंधन टूटा है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं अब कुछ देर विज्ञापन।
नेपाल टेलिकम को 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर जी नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी नेपाल टेलिकम को 4G आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकम को 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। कैलाली के धनगढ़ी में इसी जेठ 27 और 28 गते होने वाले श्रमदान रोजगार मेला की संपूर्ण तैयारी हो चुकी है। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय, सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार और धनगढ़ी उपमहानगर पालिका के आयोजन में 2 दिनों तक संचालन होने वाले मेला की तैयारी पूरी हुई है। रसुआ में गोसाई कुंड मेला शुरू हुआ है। गंगा दशहरा पर्व अंतर्गत पवित्र तीर्थस्थल गोसाई कुंड स्नान के लिए भक्तजन सुरलादी पर्वत आरोहण करना आरंभ कर चुके हैं। बता दें कि गोसाई कुंड में स्नान करने और पूजा आराधना करने से मनोकांक्षा पूरा होने का जनविश्वास है। महिला विरुद्ध होने वाले सभी तरह के भेदभाव अंत संबंधी संयुक्त राष्ट्र संघीय समिति महिला विरुद्ध के विभेद उन्मूलन कमेटी सीडा के सदस्य के रूप में नेपाल की वंदना राणा पुनः निर्वाचित हुई है। कल अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुए मतदान में राणा 146 वोट प्राप्त करके विजयी हुई है। बता दें कि वे अब सन 2025 से 2028 तक के लिए कार्यभार संभालेंगी। विश्व संपदा सूची में सूचीकृत लुम्बिनी क्षेत्र में जाने वाले पर्यटकों की संख्या नारायणघाट बुटवल सड़क की दुरावस्था के कारण घटने लगी है। ये जानकारी लुम्बिनी विकास कोष ने दी। कोरोना महामारी कम होने के बाद बाकी सभी क्षेत्र पहले की तरह हो गए हैं, लेकिन लुम्बिनी क्षेत्र में नारायणघाट बुटवल सड़क की बदहाली के कारण सालाना महज 6 लाख पर्यटक ही पहुंच रहे हैं। ये जानकारी कोष के सदस्य सचिव सानू राजा शाक्य ने दी। भानु प्रतिष्ठान के अध्यक्ष पद पर डॉ. नवराज लमसाल सर्वसम्मत चुने गए हैं। आज प्रतिष्ठान की काठमांडू में हुई बैठक से मदन पुरस्कार विजेता एवं वरिष्ठ संचार कर्मी डॉ. लमसाल के नेतृत्व में 12 सदस्यीय नई कार्य समिति चुनी गई है। इसी तरह प्रतिष्ठान के उपाध्यक्ष पद पर ऋषभ देव पंत, महासचिव पद पर डॉ. रमेश सुभेक्षु, सचिव पद पर त्रिभुवन चंद्र वागले और पुरू लमसाल और कोषाध्यक्ष पद पर ओम रिजाल निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। गजा में इसराइली हमलों का दौर जारी है। इसी बीच इसराइली सेना ने मध्य गजा के अन्य क्षेत्रों और वहां मौजूद नुसरत रिफ्यूजी कैंप को निशाना बनाया है, जिसमें 55 फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए हैं। यह जानकारी आज गजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि शनिवार को नुसरत और मध्य गजा के अन्य क्षेत्रों में इसराइली हमलों में कम से कम 55 फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए हैं। इसराइली सेना ने डेर अल बलाह स्थित अल अक्सा शहीद अस्पताल के आसपास हवाई हमले किए हैं, जिसमें कई लोग मारे गए और घायल हुए हैं। रफा स्थित कुवैत स्पेशलिटी अस्पताल के निर्देशक ने बताया कि इसराइली सेना द्वारा मारे गए लोगों की दर्जनों लाशें सड़कों पर पड़ी है। इस बीच बचावकर्मी घायल लोगों तक पहुंचने में असमर्थ है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 31.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में सहभागी होने के लिए कल करेंगे प्रस्थान। रोजगारी सृजित करने के हिसाब से निवेश का उपयोग होना चाहिए, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली का कथन। और इसराइली सैनिकों द्वारा रिफ्यूजी कैंप पर किए गए हमले में 55 फिलिस्तीनियों की मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।